कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
कबीर इस संसार ने समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ रे भेंट की रुतरा चाव पार। उसी वही वाणी जो की तू उनसे प्राप्त गरीबदास जी ने जो का तू उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेंट पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास हुए भाव जल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा हुआ करती है और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भर के उमड़ के और फ्लो होकर किनारों के ऊपर के बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो बादुए की नदी है, और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार करेगी। क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के दें और बात करें सचखंड जान की, भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं। उसकी विधि है दरिया पार होने की, एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो और फिर बहुरों से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो, तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं, और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो। सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे, पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना, पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना, शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्वीना, पाख मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना, कुंभ करे चक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना, अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना, जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना, तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना, गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भलीना, आदिनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे हीना, बड़े बड़ों तो मूल गवाया छोटे भरे करीना, काम देनु काया के माही अमृत दू कर पीना, तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना, सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना, जय सिर जाय सिर नहीं दीजे यो पद अजर जरीना, सतगुर सार वस्तु बतलावे और पारस लो घसीना, दर्द बंद दरवेश समझे मूर्ख कहाँ कलीना, जिनको का दीदार, जिनको तो दीदार कहां, जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही जैसे अंग पसीना, ऐसे रंकार रट बोरे, ओ हम सुमरीना। मान सरोवर के जल ढहावो, ये छाड़ो मकर महीना। गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें, गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई, इस किसके भक्ति बिना कति सरीना सरह नहीं, इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी नौकर, गरीब दास कह दी ना, हमने कह दी साची बात। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जा स्वेत दजा फर्रा ही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहां स्वेत धजा फर्रा वैराम रंग होरी हो। सतलोक में अरस कुर पर स्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 996 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहां एक बहुत सुंदर सफेद गुमट के अंदर गुमज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुमज में उसका। यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुमट। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहां श्वेत धजा फर्रा वे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद धजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि वाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहां लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भये रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूर अम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूं रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो, चतुर्मूड अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाद है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अनरज जेरज उद्बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीव राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता, ये सभी मालक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो, सतगुरु में ला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो, दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो, सुन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहां खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते सुन सरोवर में, यानी ऊपर सुन शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहां सब सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहां परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे, या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए, क्या बताते हैं, सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहां खेल है फाग बसंत राम रंग होरी हो, विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुरनर मुनि जन संत राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो, घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहेब एक राम रंग होरी, यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा, इसका कहने का तात्पर्य। आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली, इसका इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं, या कोई और नाती से खेलते हैं, कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसके उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी से, और कोई भैरव भूत बतालों से, कहते तुम इन से होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं, वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उस तरह खेलो होली, ये नकली होली, इन गिला खेलते बहुत दिन हो गए, ये विनाशवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता में कहा, गीता ज्ञानदाता ने, कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं, तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है, तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा, क्या बता रहे हैं, सवेत गुमट सर से हेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्हा का सेरे हुए आकर मुकुट है मालिक का, श्वेत गुमट सिर से हेरा रंग होरी हो, और जल के किरण अनंत राम रंग होरी हो। सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावे, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब इन झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं, तो सतगुरु के कहने से फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरी कब हो, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरिया पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के, वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वायु कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है, वायु सारे डाक ठोक दी भाग गए गांव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे हर खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुमार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुमार की जालसाजी है। उसने कहा वो शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले वे कैसे, कि मेरे साथ चलो। बुरख वाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझाया बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी उतरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूंगा, मेरी सहयोग दो। चल भाई, वो अपने पांच चार गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा खेती, फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने भरे सुर अपने लागे हर हर कर हो हो, तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकी कोकू की, वो भी ला गया वहां से हुचू हुचू करता उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़गी कितना हो, उड़े भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्सी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कि सागी गद आए है। नीचे उतर का आया बोला यू रहा थारा शेर भाई। फिर जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या केस सोची ना लायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, बुस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो बेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी बूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी बूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनि घर आसन करो रंग होरी हो, वो पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो। द्वादश दल में पैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समो राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को भय रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ऐ नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी बूचरी खेचरी उन्मनी, इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जप राम रंग होरी हो, अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेश राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण की जिये रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उस श्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहां सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उस श्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी ओ हो, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन अटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पड़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षरयाम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहां शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले, कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो, वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है। सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो, पर उस ज्ञान का जानकार तत्वदर्शी संत हो, वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। यहां कहा है कि जो ओम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामन समन्य प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा, ये ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्व भाव से, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीताजी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में, और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये। इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, उस परमेश्वर के पाणी का, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन उस तत्ब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, के हे कृष्ण वो कौन है, फिर तत्ब्रह्म बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सर्पुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, ये अंडरस्टूड है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा थी उदारते, ये लोग तेरे में आविश से विवृति अवे ईश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रा सर्पुरुष अक्षर पुरुष तो 16वें श्लोक में, और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सर्पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर उत्तम पुरुष, वो है परम अक्षर परम अक्षर ब्रह्म, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा, और वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया, पुण्यात्माओं, हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, को कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो। जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में, परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है। ये ओम तत् सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरण व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की उनको मुझे छोड़ दे। और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। इब हमने किसी का कर्जा ले रहा, खैर कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, अगले भाई छोड़ इसको मैं ले जाता हूं, वहां मजदूरी करें, तेरे वहां बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम दिवा के, ले बेटा करे बढ़िया नौकरी, दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे। तो वो आप पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को, ब्रह्म लोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये पांचों यज्ञों करते थे, ये भी यही उसी ब्रह्म लोक में खा लेते थे देवता बनकर। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञान दाता कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अरे इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे, कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता उसका अर्थ आना करता है तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रख्या, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी, अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। यह है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां तो ये लख गए गच्छ माने जा, इसका सब न बेरा था गच्छ माने जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते हैं। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार कि शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बठा बठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे है मैं तो आपकी शरण में हूं और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए आपके शरण हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहां फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा यानी जची। अरे 18 में जाए कि 62 श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है, इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक जिसमें वर्ज माने आना लिख रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता। आपको शब्द कोश दिखाता हूं, संस्कृत हिंदी कोश, ये कौन है इसका संग्रहकर्ता, वामन शिवराम आपटे, और ये यहां से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना विदा होना। अब आपको दिखाते हैं ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी एक का कुएं की बांग भी रखी नहीं। देखो श्री सुधांशु जी आचार्य श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली, यहां से ये इनके प्रकाशक हैं मुद्रक के। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां, सर्वे धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा सुच, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। अरब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहां से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्री मद भगवत गीता अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति दोपटवारा पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सटेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। आज इनका देखना, इन्हें तो कति कट्ठा काम कर रखे, तीन तीन चार चार कट्ठे की सीट रखी, ये सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्ट दसो अध्याय अठारवां अध्याय, और यहां पर है सर्व धनमान प्रीतज माम एकम शरण व्रज एम तो सर्व पापे व्यामोक्षामि मासुच। इब तीन चार का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। इब देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपुण्यात्मो एक और कमाल दिखाऊंगा अपने, इन शर्म बिना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, मीनिंग मतलब सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फिर घुमाना, देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्री मद भगवत गीता यथा रूप, और कहां से छपी है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोले हैं, एस्कॉन वाले, और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती है। यह देखना, ये आपको सुना दिया द्वारा, किसके द्वारा अनुवादित है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, और यहां से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है अठारवां अध्याय, अठारवां अध्याय और श्लोक नंबर 66, ये यहां से शुरू होता है। सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मासुच। इसका अनुवाद किया है यहां पर, देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ, सर्व धर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परितज माने त्याग कर, परितज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, अवरज माने जाओ। ठीक है, यह तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई, वरज माने जाना, और मेरी शरण में जाओगे अर्थ क्या है। अब यहां देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहां घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पाड़ दिया। अब देखो इन किसे डले डुआ रखे जनता को, हे भगवान, या इसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवडे गीता या, अरे एक घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता, दास आपके समक्ष कराया रूबरू, इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक क्यों बना रखी, साधक संजीवनी। और इस अठारहवें जाके 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझवाने से इसको उल्ट सोड अड़गम सड़गम कर, इसके को 12 प्रश्न पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए, बता गोबर का हलवा बन सके कभी, इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला अनर्थ करके, देखिएगा। ये है साधक संजीवनी, ये किसके द्वारा है, श्री राम सुखदास, श्री राम सुखदास है, इसके अनुवादकर्ता तो बड़े महापुरुष माने जाते हैं, और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं, और कहां से छपी गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहां से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा, ये भगवान कबीर, ये माया अटपटीक सब गट आनड़ी, किसकी से न समझाऊं या कुआ वांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहां से है, क्या लिखा है, सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापे भो मोक्षामि मासुच। यहां देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में वर्ज माने आ जा। वाजीवा। अब देखो ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इसे वर्ज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहां से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर अखबार के से समाचार पत्र जैसे और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाएगी देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई और चौड़ाई देखो ये देखो तेरा गजब ये वो तेरा बुलाओ ये भगवान यहां पर आकर टके हैं। देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता। और फिर यहां आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ उतरा गजब 1217 पर यहां तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक ये यशोधा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में यशोधा मैया किता है इसमें मूर्ख बना रहे ये मारे बना गए यशोधा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम लादे है ये कोई मंत्र ये कहां से लाया। ये शास्त्र में गीता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो ना उनकी गति हो ना कोई सिद्धि प्राप्त हो यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्त्यो और अकर्त्यो की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए ना तो ब्रह्म मिट्टी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेमाल करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो ये है इसके राइटर अनुवादकर्ता ये हिंदी पॉकेट बुक से छपी है विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे ये देखो सर्व ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का सर्व धर्मान परितज माम एकम शरण व्रज सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूं आपको नया इंजीनियर पा क्या था इस गीता के अनुवाद में ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन किसा नाश करा देख यह एक पुस्तक है। ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर जिला झज्जर और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा दिखाऊं इसने क्या लिखा है प्राकथन में गैर पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा ताला पाठ कई चतुर शिल्पी ही इस तरह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा इसे शान पर चढ़ाकर चढ़ाना चाहा वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। इससे जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी रह ही जाता था मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहां लिखा है अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है अपितु वह है इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रतन बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छाटा है, यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें उस पर कोई पिना करें लोहे की गुमती हुई, फिर किसी होते उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये इन्हों का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रतन काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। न्यू कहे ये 200 श्लोक है बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहा सारे की बिजली पड़ रही है। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में गणा तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यू नो कहे आत्मानंद नवम दसम एकादश और द्वादश अध्याय ये सारे मिलावट है। नवमें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और नौवां दसवां और ग्यारहवां और बारहवां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए तेरहवां अध्याय, इसमें तेरहवें अध्याय के प्रथम से लेकर छह श्लोक प्रक्षिप्त हैं, ये तो मिलावट से बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का चौदहवां अध्याय, चौदहवें अध्याय में दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय पंद्रहवां अध्याय सारा ही नकली है। वारे सेरे, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी इसने तो इसी मोटी बनाई थी, या बालक पर भी ना उठे यू चला ठीक करने, इसने बना दिया कॉमिक्स नो गया ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की, वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर, उसे कहा भी तू बढ़िया मकान बना दे राजा का और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कदे मेरा बड़ा हट मरवा दे। मिस्त्री बोला जी ठीक है, वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के, एक बहुत बढ़िया सतीर लाया था उडन बीम और अच्छा 20 फुट लंबा 17-18 फुट लंबा और अच्छा ऐसा मोटा और नो बहुत सुंदर, और कड़ी वड़ी ले आया और राज तय लाग गया चिनाई करण, उस कड़ी और सतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के। मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में, पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं ये सतीर लाए हैं ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैतने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बन जाएगी, नो बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में कोनी न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गई है तो फिर राजा डांट मारेगा, नो बोला जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाएगद एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से, नो बोला जी देख उच्चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात जी तो बहुत बढ़िया बन गया अभी तक, उसने सोची एक और ने दिखा लो कदे फिर भी चूक रहेगी वो, एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यू सतीर ठीक है, बोला ना जी तो कति खराब है बांगा टेढ़ा है, बोला वह कर ठीक। अब दो दो इंच वो उतार गया, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, इन तला गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बुला जिसमें तो बहुत नुक्स है, बुला वह कर ठीक। वो भी फंड गया, दो दो इंच वो तार गया। कहने का भाव ये है, वह कड़ी बना के धरती से तीर की, उस पिल उड्डन बीम की कड़ी बनगी चारों तरफ से छोल छोल कर। अब उस राज ने जो लाया था खरीद दुआ के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर जाओ पे लठा के। वो गए सतीर ने बोला आठ सात जने जाओ। वो दस बारह भेजे मजदूर, वह गए बोला मंत्री जी सतीर बता बोला यू खड़ी उधर है भाई। उन्होंने एक जना जाओ उठाए। अब वो कारीगर ने कह रहा सतीर नहीं लाए तुम, खाली आने लाग रहे बुलाई ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्योंकि सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहां पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोल रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने के कर दिया। बोला रे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक की ताले अंदर सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया। यो निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। परमात्मा कहा करते देखो रे, कबीर साहब कहा करते मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं, और इन अज्ञानियों को ये महर्षि कह जिन अनर्थ कर रखे, सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका इस प्राइम टाइम में आपका जन्म और ये सतनाम और सारनाम आपको मिला। धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव।